जावेद साहब, सबसे पहला बुनियादी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि कहीं पर लफ्ज तकवा इस्तेमाल होता है, कहीं पर तज़किया इस्तेमाल होता है। तज़किया और तकवा दो अलहदा अलहदा इस्तलाहें हैं या दोनों हम माना इस्तलाहें हैं?
ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं, अलग अलग इस्तलाहें हैं, दोनों का मुद्दा और मफहूम भी अलग अलग है। तकवा का मतलब ये है कि आपको ये अंदेशा है कि कहीं आप गलती करके अपने परवरदिगार की गिरफ्त में ना आ जाए, अपने आप को बचा के रखना, अंदेशनाक रहना, मुतनब्बे रहना,
ठीक,
ये तकवा है।
अच्छा,
नतीजे के लिहाज से इसको हम यूं भी ताबीर कर सकते हैं कि तकवा हुदूद के अंदर रहने का नाम है। असलन अगर इस लफ्ज को देखें तो ये बचने के मफहूम से बना हुआ है।
अच्छा,
एक मशहूर वाकया बयान किया जाता है ना कि जिसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया था, तो उसमें क्या बात कही गई? उसमें यही कहा गया कि क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जो खारदार रास्ता था, जिसमें कांटे ही कांटे हैं, दाएं बाएं से कांटों की झाड़ियां दामन लेने के लिए बेताब हैं, क्या करेंगे? उसका जवाब ये दिया गया कि हम अपने दामन को समेटेंगे और बच बचा के उस रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रवैया है कि आप मतलब्बे हों, जिंदगी क्या है, जिंदगी के हकायक क्या है, ये कोई बेखौफ रहने की चीज नहीं है, इसको बाबर बैश पोश के आलम दोबारा नीस्त के उसूल पर नहीं गुजारा जा सकता, ये एक जिम्मेदाराना एहसास के साथ गुजारी जा सकती है। इस जिम्मेदाराना एहसास के साथ आपको अपने घर में, अपने वतन में, अपने माशरे में, अपने कारोबार में, अपने मामलात में बचकर जिंदगी बसर करनी। किस चीज से बचकर? कि आप कोई ऐसा रवैया ना इख्तियार करें जो आज या कल आपके लिए नुकसान का बायस बन जाए।
खबरदार रहना मतलब?
खबरदार रहना, मुतनब्बे रहना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, डरते हुए, अंदेशनाक होते हुए जिंदगी बसर करना।
तो जावेद साहब, ये कोई यानी दीनी इस्तिलाह है या इससे पहले अहले अरब अपनी जुबान में ये लुगवी मानों में भी ये तकवा का लफ्ज बोला करते थे?
अहले अरब अपनी जुबान में इस्तेमाल करते थे, आम लफ्ज है, उनकी शायरी में इस्तेमाल होता है, उनके अदब के इस्तेमाल होता है, इसके सारे मुश्तकात कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, हदीसों में भी इस्तेमाल हुए हैं।
ठीक है,
ये जानवर जिस तरह अपने आप को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, कभी उन पर कोई हमलावर हो जाए तो उसमें अपनी हिफाजत करते हैं, उन सब मफाहिम के लिए इस्तेमाल होता था।
अच्छा,
कुरान मजीद ने इसको अल्लाह ताला के हवाले से इस्तेमाल किया।
ठीक, ठीक,
यानी इस पहलू से इस्तेमाल किया कि आप अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचने की कोशिश करें। चुनांचे आपने देखा होगा कि कुरान मजीद के अक्सर मुतरजमीन जब तर्जमा करते हैं तो वे कहते हैं कि ताकि तुम डरने वाले बन जाओ,
डरने वाले, सही है,
ताकि तुम अंदेशा करने वाले बन जाओ। तो ये उसके लुगवी मफहूम को सामने रखकर ही तर्जमा किया गया।
ठीक,
डरना, बचना,
ठीक है,
ये चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि हजर का लफ्ज है,
सही है,
हमारी उर्दू में बोला जाता है,
बिल्कुल सही,
उसमें भी यही चीज है कि आप बचें। अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर, तो उसमें यही लफ्ज हजर इस्तेमाल हुआ है, उसमें भी यही चीज है। तो हजर भी वही मफहूम रखता है, बचें, अपने आप को मुतनब्बे करके इस रास्ते पर चले, आप बेखौफ होकर झूमते हुए यहां से नहीं गुजर सकते।
ठीक है,
ये जिंदगी है,
ये ठीक है,
और जिंदगी तलवार की तरह तेज भी है और बाल की तरह बारीक भी है। ये एक पुलसरात है, इसके ऊपर से आपने गुजरना है। ये दुनिया के लिहाज से भी ऐसे ही है, ये आखिरत के लिहाज से भी ऐसे ही है। तो इसमें जो रवैया इंसान को इख्तियार करना चाहिए, उस रवैये के लिए अरबी जुबान का ये लफ्ज इख्तियार किया कुरान मजीद ने।
ठीक है,
और इसको इस हवाले से इस्तेमाल करके गोया एक इस्तला भी बना दी।
बिल्कुल,
यानी कुरान मजीद में अब अपना ये खास मफहूम रखता है, अल्लाह का तकवा, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से अंदेशा, अल्लाह की गिरफ्त से बचने की जिद्दोजहद, अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए अपने आप को तैयार रखना, मुतनब्बे रहना, ये सारे मफाहिम अब इसमें दाखिल हो गए हैं। इसके बिल्कुल बरखिलाफ तज़किया का मतलब है पाकीजगी।
ठीक है,
यानी तज़किया दर हकीकत किसी चीज को साफ करने, पाकीजा बनाने और उसको पाकीजगी में नशोनुमा देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका सलवी मफहूम भी है, ईजाबी मफहूम भी है। सलवी ये है कि मसलन आप एक खेत को तैयार करना चाहते हैं तो खेत में क्या करेंगे, जड़ी बूटियां उगी होंगी, तरह तरह के दरख्त और झाड़ियां होंगी, आप उसको साफ करते हैं और फिर उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि जैसे आपने उसकी मिट्टी नरम कर ली है, उसको साफ कर लिया है, इसी चीज को आप नशोनुमा देंगे, एक अच्छी फसल उससे हासिल करें। तो ये दोनों पहलू इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी मुस्बत भी और मनफी भी। تو تزکیہ پاکیزگی کا نام ہے، یعنی اگر آپ آلودہ ہیں تو دھو لیں اپنے آپ کو، اور اگر پاکیزہ ہیں تو مزید پاکیزہ بننے کی کوشش کریں.
یہ تزکیہ ہے. اس کا مطلب جو آپ نے جو اس کے جو معنی بیان کیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی، صرف تقوی جو ہے وہ تزکیہ اس کا رزلٹ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں تقوی کسی چیز پہ اختیار کرتا ہوں، خبردار رہتا ہوں، متنبع رہتا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ تزکیہ کی صورت میں برآمد ہونا ضروری نہیں ہے.
نہیں دیکھیے، تقوی جب آپ اختیار کریں گے تو کس مقصد کے لیے اختیار کریں گے؟ اسی لیے اختیار کریں گے نا کہ آپ اخلاق کی لحاظ سے بہتر ہوں.
ٹھیک.
آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی شخصیت کو، آپ کے افکار کو، آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو آلودہ کرنے والا ہو.
ٹھیک ہے.
آپ جب حدود کی پابندی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے تقوی سے بھی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تزکیہ ہی ہے.
ٹھیک ہے. رزلٹ اس کا وہی نکلے گا،
نتیجہ اس کا وہی نکلے گا.
ٹھیک ہے.
ہر چیز سے آپ تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں. بھائی جب میں وضو کرتا ہوں، جب میں اپنے بدن کو پاک کرتا ہوں، جب مجھ پر کوئی غلاظت گر جائے تو میں اس کو دھوتا ہوں، تو یہ بھی تزکیہ، یہ بھی تطہیر. تطہیر کا لفظ تو اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. تو قرآن مجید میں یہ بالکل ہم معنی استعمال ہوا ہے، تطہیر، تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا. تزکیہ پورے دین کا مقصد ہے، یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے، جو انبیاء کی ہدایت ہے، اس کا ہدف اور مقصد ہی تزکیہ ہے. اب تزکیے کو آپ نے حاصل کرنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے اپنے آپ کو. یہاں اس کو ہم طہارت کہیں گے، یہاں اس کو صفائی کہیں گے، یہاں اس کو نظافت کہیں گے، یہاں اس کو تطہیر کہیں گے. یہ خور و نوش میں بھی ہوگی.
ٹھیک ہے.
یعنی ہم نے کوئی غلیظ چیز نہیں کھانی، ہم نے درندے نہیں کھانے، جیسے کہ ہمارے دین میں ہدایات دی گئی ہے، تو یہاں بھی ہوگی. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق میں ہوگی. تو اخلاقی پاکیزگی جب آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو جدوجہد کرنا پڑے گی نا، اس لیے کہ اخلاقی پاکیزگی تو جدوجہد کے بغیر نہیں حاصل ہوتی.
ٹھیک ہے.
ویسے تو اگر آپ کو اپنے بدن کی غلاظت بھی دور کرنی ہے تو آپ سست ہو کر بستر پر نہیں پڑے رہ سکتے، اٹھنا ہی پڑے گا.
بالکل.
پانی فراہم کرنا پڑے گا، غسل خانے میں جانا پڑے گا، نہانا پڑے گا. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ اخلاق کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، جدوجہد کرنا پڑے گی. تو وہ جدوجہد جب آپ کرتے ہیں، اس میں آپ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے.